بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، دیکھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی باتیں جو تصوف اور سلوک کے بارے میں ہیں، اس کو حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے انفاس عیسیٰ. تو حضرت مفتی تقی عثمان رحمت اللہ علیہ نے اس کو رمضان المبارک میں روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو مجلس کے اندر باتیں کی ہے. ان ساری باتوں کو اسی کی تفسیر ہے جمع کر کے کتابی شکل بنا دی. آج آپ کے سامنے اسی کا درس چل رہا ہے اور ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے تصوف کی حقیقت. تصوف قرآن کے اندر اس کی آیت ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ شریعت کی اصطلاح میں کہ انسان کے ظاہری اعمال کو بھی ٹھیک کرے اور باطنی اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کا نام تزکیہ ہے. اب ظاہری اعمال میں بھی دو طرح کے اعمال ہیں، کچھ کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں. کرنے کے اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. نہ کرنے کے اعمال جھوٹ، غیبت، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، شراب نہ پینا وغیرہ. ایسے ہی باطنی جو صفات ہیں، باطنی اعمال ہے، اس میں بھی دو طرح کے ہیں. کچھ اخلاق حسنہ ہے، کچھ اخلاق رذیلہ ہے. اخلاق حسنہ اچھے صفات صبر، توکل، شکر، تواضع، اخلاص ہے. اور وہ یعنی رذیلہ صفات، خراب صفات، وہ ہے مثلا تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، عداوت، یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں. تو ان سب چیز کا یعنی یہ پاک کرنا نفس کو ان ساری چیزوں سے، اسی کا نام تزکیہ. اور وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واز فرما رہے دہلی کے اندر. بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا. واز فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ آج میں ایک بات آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، یہ بات مجھ ہی سے سنیں گے اور کسی سے نہیں سنیں گے، اور کسی سے سننے میں نہیں آئے گی، اور میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ علم اللہ تعالی نے مجھے ہی القا فرمایا ہے. کیونکہ اوپر ایک بات گئی تھی کل، وہاں پر ہم نے ختم کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے انسان اپنے اندر کی اچھی صفات کو بتاوے بڑائی کے طور پر، اور ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر. شکل دونوں کو ایک ہے لیکن اس میں فرق انسان نہیں کر سکتا. اس لیے ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی. تو اب اس پر ایک مثال بتا رہے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ خود نے فرمایا میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ مجھ ہی سے سنیں گے، کسی اور سے سننے نہیں آئے گی. تو اب یہ تو ظاہر بات ہے بڑائی کی ایک علامت ہے، لیکن یہ کہہ رہے تحدیث بن نعمت کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم القا فرمایا ہے. یہ بات کہنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، یہ بات کہہ دی پھر خاموش، پھر فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے یہ کیا جملہ کہہ دیا؟ کیا ये बात आप मुझ ही से सुन सकेंगे और कहीं सुनने में नहीं आएगी, ये तो दावा और तअल्ली है, यानी ये तो एक दावा हो गया और अपनी बढ़ाई हो गई, और मैंने अपनी बढ़ाई बयान की है और उसको मैंने तहदी से नेमत का नाम दे दिया, लिहाजा मैं इस पर अस्तगफार करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा। अव्वल तो मैंने अपनी बढ़ाई बयान की और फिर उस बढ़ाई को तहदी से नेमत के पर्दे में छुपाने की कोशिश की, और कायदा है कि तौबत तौबतु सिर बिसिर वल अलानियतु बिल अलानिया, क्योंकि ये गुनाह मैंने अलानिया किया था, सबके सामने मैंने अपनी बड़ाई की तो मैंने गुनाह अलानिया किया था, इसलिए तौबा भी मैं अलानिया करता हूं कि मुझसे गलती हुई है, इस गलती पर इस्तगफार करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐन वास के दरमियान दौरान उन्होंने ये काम किया, इस तरह कोई दूसरा करके दिखाए, इस तरह कोई करके दिखाए, ये काम वही शख्स कर सकता है जो आप अपने आप को मिटा चुका हो, मिटा चुका हो कर सकता, अपने को फना कर चुका हो, फिर नफ्स की बारीक चालों से बाखबर हो और अपने नफ्स का निगरान रहता हो, उसका एहतिसाब हमा वक्त करता रहता हो, तो ये कौन कर सकता है? जो नफ्स की बारीक चालों से बाखबर हो, तो जुमला बोलने के बाद उनको एहसास हुआ, सबके सामने फिर नफ्स को मारा भी, अस्तगफिरुल्लाह भी कहा, अपने नफ्स की निगरानी रखता हो, उसका हिसाब करता हो। अब आप देखिए कि जो बात मैं बयान कर रहा हूं, ये ताल्लुक के तौर पर बयान कर रहा हूं या तहदी से नेमत के तौर पर बयान कर रहा हूं, उनके दरमियान फर्क करना बड़ा मुश्किल है, उसको पहचानना हर एक के बस का काम नहीं है, इस फर्क को समझना हर एक के बस का काम नहीं। और दूसरा एक होता है तवाजु और एक होता है जिल्लत नफ्स, इसी तरह तवाजु बड़ी उम्दा चीज है, आला दर्जे की सिफात है और मतलूब है, और एक दूसरी सिफत होती है जिल्लत नफ्स, यानी दूसरे के सामने नफ्स को जलील करना यह हराम है। अब तवाजु में भी नीचे बनना है और दूसरे के सामने जलील करना उसमें भी नीचे बनना है, तो जलील करना हराम है। अब इसमें फर्क न करने की वजह से धोखा खा जाते, हम समझ रहे होते तवाजु कर रहे होते, हकीकत में वो अपने नफ्स को जलील कर रहा होता गुनाह का काम कर। और एक आदमी सोचता है कि नहीं मैं अपनी इज्जत नफ्स कर रहा हूं, कहा कि अपने नफ्स को जलील करने से बचाना है, हकीकत में वो तकबुर कर रहा होता है, तो उसको जलील करना चाहिए, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करना कि कौन सा अमल तवाजु की वजह से किया जा रहा है, कौन सा फैल जिल्लत नफ्स है, इसके दरमियान फर्क करना हर एक की बस की बात नहीं। एक वाकया इसी फर्क के सिलसिले में हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाकया बयान फरमाया कि मैं एक मर्तबा रेल में सफर कर रहा था, रेल में मेरे पास कुछ देहाती भी बैठे हुए थे, सफर के दौरान जब खाने का वक्त आया तो उन देहातियों ने अपने साथ जो सालन रोटी लाए थे वो निकाल कर सामने रखा और मुझे भी खाने की दावत देते हुए कहा कि हजरत जी कुछ गू मूत हमारे साथ भी खा लो गू मूत हमारे साथ भी, अभी वो जरा वो करने के लिए, तवाजु करने के लिए, तो फरमाया हमारे साथ खा लो। उस खाने को तो को तवाजुअन वो गूमूद कहते हैं का नाम दे दिया। अब बात बजाहिर तो ये तवाजु की बात थी लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की रिस्क की नाकदरी थी, जाहिर में तो तवाजु है लेकिन हकीकत में तो अल्लाह ताला की रिस्क की नाकदरी थी, कि अल्लाह ताला के रिस्क को गूमूद करार देकर उसकी दूसरे को दावत दिया और बुलाए, ये तवाजु नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री और बेतौकीरी है, बेइज्जती है। बहरहाल कभी तवाजु की सरहद जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है, कभी तवाजु की बॉर्डर जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है, और कभी उसकी बॉर्डर नाशुक्री के साथ मिल जाती है। अब किसी हद तक तवाजु करे, किस हद तक तवाजु करे और किस हद पर तवाजु न करे, और कहाँ तवाजु है कहाँ और नाशुक्री है, कहाँ तवाजु है और कहाँ जिल्लत नफ्स है, उनके दरमियान फर्क को पहचानना हर एक का काम नहीं जब तक किसी शेख से तरबियत हासिल न कर ले। ये चीज महज पढ़ा देने से हासिल नहीं होती, ये चीज महज पढ़ा देने से हासिल नहीं होती कि किताब में पढ़कर किसी चीज की हद पूरी पूरी मालूम कर ली और फिर खुद ही उसके फवाइद और उसकी कयूद निकालने शुरू कर दिए। याद रखिए, ये इस किस्म का काम नहीं है। हाँ, ये तसव्वुफ वाला जो काम है और ये जो पहचानना है नेकी क्या गुना क्या हलाल क्या हराम क्या, इसके दरमियान में फर्क करना, इसका कोई कोर्स नहीं है जो आपको पढ़ा दिया जाए ताकि आप उसके मुताबिक समझ लो। ये एक इलाज है, जो बीमारी है इसका इलाज करा दो, सेहत मिल जाएगी तो खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। बल्कि ये काम अमली तरबियत से आता है। जब किसी शेख को मुसलसल आदमी देखता रहे और उसके तर्ज अमल का मुशाहदा करता रहे और उसको अपने हालात बताकर उससे हिदायत लेता रहे, उसके नतीजे में फिर इंसान को ये इदराक हासिल होता है कि अमल और अखलाक का ये दर्जा, अमल और अखलाक का ये दर्जा काबिले हुसूले सिफत है और ये कैफियत या दर्जा काबिले तरके रजीला है। यानी उसके बाद उसको इतना एहसास हो जाता है कि अमल और अखलाक के इस दर्जे को पहचान लेता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, इसको छोड़ देना चाहिए। एक मिसाल मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं। जैसे एक गुलाब का फूल है, किसी बड़े से बड़े फलसफी और मंतकी से कहा जाए कि तुम इस गुलाब के फूल की खुशबू की ऐसी जामे माने तारीफ करो जो उसकी चंबेली की खुशबू से मुमताज कर दे, तो गुलाब के फूल से भी खुशबू आ रही है और चंबेली के फूल से भी खुशबू आ रही है। इस काम के लिए किसी बड़े से बड़े फसी और बलिक को बुला लो, यानी अच्छी बात करने वाले को बुला लो, किसी अदीब और शायर को बुला लो, स्पेशलिस्ट बोलने वाले को बुला लो और उसे कहो कि गुलाब और चंबेली की खुशबू में फर्क बयान करो। बताइए, कोई फर्क बयान कर सकता है? हरगिज नहीं। बस के फर्क करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूछने वाले से कहा जाए कि इस गुलाब के फूल को सूंघ लो और इस चंबेली के फूल को सूंघ लो, और सूंघने के बाद पता चल जाएगा कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है और चंबेली की खुशबू कैसी होती है। उसके अलावा दोनों के दरमियान फर्क मालूम करने का कोई तरीका नहीं। सूंघ लो तो पता चल जाएगा कि हाँ, दोनों में फर्क है। वो सूंघा नहीं है और आप ये करो कि तारीफ करो कि गुलाब के फूल की खुशबू ऐसी होती है वैसी होती है और चंबेली की, लेकिन कभी सूंघा ही नहीं है तो क्या फर्क करूंगी। ऐसे ही नेकी और गुना को हमने कभी उसको इसका टेस्ट देखा ही नहीं है। जब उसको नेकी का जब टेस्ट देखेंगे और गुनाह की जो जुल्मत देखेंगे तो आपको फौरन पता चलेगा कि हाँ, ये नेकी है और ये गुनाह है। इसके करने के बाद मेरे दिल की कैफियत यूं बदल गई और इसको करने के बाद दिल के अंदर एक खुशी महसूस हुई। तो उसका मजा चखने के बाद ही पता चलता है। दूसरी मिसाल, एक मिसाल और सुनिए। देखिए, आम भी मीठा होता है और गुड़ भी मीठा होता है। गुड़ की मिठास कैसी है और आम की मिठास कैसी है? दोनों की मिठास में जो फर्क है वो किसी बड़े से बड़े फलसफी फिलोसफर मंतिकी से बयान करा वो हरगिज बयान नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की मिठास का जो फर्क है वो जबान से लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस फर्क को जानने का ये तरीका है कि इस पूछने वाले से कहा जाए कि तू गुड़ भी खा लो, गुड़ खा लो और आम भी खा लो, फिर पता चल जाएगा कि ओहो, आम की मिठास अलग है और गुड़ की मिठास अलग है। जी अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह इंसान के बातिन के जो फजाइल है अंदर की, मसलन तवाजु है, अगर इसकी लफ्जों में कोई मुकम्मल तारीफ बयान करना चाहे तवाजु की तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब किसी मुतवाजे आदमी को देखोगे और उसके अमल का मुशाहदा देखोगे, मुशाहदा करोगे और उसकी सोहबत में रहोगे, तो उसके नतीजे में वो सिफत तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होनी शुरू हो जाएगी। यानी तवाजु की तारीफ मत सुनो, बल्कि तवाजु वाले के पास बैठो तो पता चलेगा कि तवाजु क्या होती है। यानी वहां बैठोगे तो उसको चखो, तवाजु वालों को चखना हुआ। चखना कैसे है कि बैठेंगे ना तो तुम्हारे अंदर खुद ब खुद उसका टेस्ट मिलेगा। उसकी सोहबत में बैठने से हमारे अंदर वो चीजें मुंतकिल होगी, और उसके तर्ज अमल का मुशाहिदा करोगे, उसकी सोहबत में रहोगे, उसके नतीजे में वो सिफात तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होने शुरू हो जाए। इसलिए तसव्वुफ और सुलूक में शेख की सोहबत और उसकी तरफ रुजू करने की जरूरत होती है। शेख की सोहबत और उसकी तरफ रुजू करने की जरूरत होती है। सोहबत भी हो और शेख से रुजू करो, पूछो। सिर्फ बातें कर लेने से चीज हासिल नहीं होती, बल्कि किसी के सामने रगड़े खाने से अल्लाह ताला फजल फरमा देते हैं और ये चीज हासिल हो जाती है। बहरहाल, पीर और शेख के हाथ पर बैत होना कोई फर्ज नहीं। पीर या शेख के हाथ पर बैत होना कोई फर्ज नहीं कि आदमी किसी शेख के हाथ पर हाथ रखकर जरूर बैत हो जाए, लेकिन अपनी इसलाह कराना जरूरी है। देखा, बैत होना जरूरी नहीं, इसलाह कराना जरूरी है। इसलाह बगैर बैत हुए भी हो सकती है। जब अपनी इसलाह के लिए कोई शख्स अपने शेख की तरफ रुजू करता है, जब अपनी इसलाह के लिए कोई शख्स अपने शेख की तरफ रुजू करता है, तो उस रुजू करने का असल मकसद यही होता है कि आदमी को फजाइल हासिल हो, अच्छाइयां मिले, और रजाइल से आदमी बच जाए, बुराइयों से आदमी बच जाए, इन रजाइल का इमाला हो, इन बुराइयों को नेकियों से बदलना है, और वो इंसान के काबू में आ जाए। सुलूक और तसव्वुफ का ये असल मकसद है, ये इसलाह है, और ये करना बहुत जरूरी है। इसको हमने एक मामूली समझा है, हालांकि इसलाह करना हर एक के लिए जरूरी है, और इतना इसलाह करना जरूरी है, शेख बनना जरूरी नहीं, इतनी इसलाह हो जाए कि हम समझ सके कि ये नेकी है और ये गुना है। बस हम समझ सके कि ये तवाजु है और ये किब्र है, ये समझना हर एक को जरूर, वरना क्या होगा, धोखा खा जाए और पूरी जिंदगी फिर झगड़े में पड़ा रहेगा, क्योंकि पता ही नहीं होता। इसलिए इतना मिल जाए, ये ईमान बनेगा इतना। अलबत्ते सिलसिले में अजकार और औरात या मुख्तलिफ वजाइफ सालिक के लिए मोइन और मददगार हो जाते हैं। सालिक के लिए ये जिक्र अस्कार जो दिए जाते हैं, मुराकबे जो दिए जाते हैं, वो मोइन और मददगार हो जाते हैं। मगर हर शख्स के लिए ना अस्कार और औरात की मकदार कितना, उसको जिक्र करना उसकी मकदार, उसके मौका और वक्त, इस शेख की रहनुमाई और मशवरे से ही मुकर्रर करने की जरूरत है। अब उसको जिक्र कितना दिया जाए, अब वो शेख जानता है कि वो मुरीद, कि वो मरीज, उसको किस कितना दिया जाए, वो उसके हिसाब से चॉइस करेगा, अपने हिसाब से चॉइस करेगा। जैसे डॉक्टर किसी को कितनी गोली देना है, कौन सी देना है, किस किस वक्त में देना है, ये डॉक्टर ही तय करता है, मरीज तय नहीं करता है। तो ऐसे ही जिक्र अस्कार कितने देने हैं, कौन से वक्त में देने हैं, तो वो सारा शेख ही तय करे, मशवरे से ही मुकर्रर करने की जरूरत होती है। उसी से इसलाह हाल का फायदा होता है, वरना आम हालात में ये अस्कार और औरात इस दर्जे में खुद मकसूद नहीं, बल्कि असल काम अपने अखलाक की इसलाह है और उसका तज़किया है, जिसके लिए जरूरी है कि शेख को अपने हालात की इत्तला देता रहे। तो देखा, पहले इत्तेबा थी कि जो बताया वो करे, उसके बाद फरमाया इत्तेला दे, फरमाया जो किया है उसकी खबर दो। इत्तेला देता रहे, इत्तेला देना जरूरी है। सहाबे किराम हर बार हर काम को करने के बाद इत्तेला देते थे। पहले जाते वक्त हिदायत देते थे, फिर जो कुछ भी हुआ आकर हिदायत इत्तेला देते थे। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को भेजा और वहां जाकर उनका आपस के अंदर इख्तिलाफ हो गया। एक एक जमात भेजी आपने और वहां जाकर उस जमात के जो अमीर थे, जो लीडर थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने सारे साथियों को कहा कि भाई लकड़े जमा करो। लकड़े जमा कर दी और लकड़े जमा करने के बाद फरमाया इसमें आग लगा दो। आग लगा दी। फिर इस अमीर ने कहा कि सब के सब इसमें कूद जाओ। क्या फरमाया? कूद जाओ। अब सब कहने लगे कि यार आग में कूदना चाहिए। कुछ कहने लगे भाई अमीर की बात तो मानना चाहिए। कुछ कहने लगे नहीं, ये समीर की बात ऐसी नहीं मानेंगे, हम तो आग से यानी जहन्नम की आग से बचने के लिए तो निकले हैं और हमें फिर से आग में निकाला डाला जाता है, नहीं मानेंगे। खैर आपस में इख्तिलाफ हुआ, यहां तक कि आग भी ठंडी होगी, अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया। फिर अपना वक्त पूरा किया। वक्त पूरा करने के बाद अब इत्तला दे रहे, हुजूर सासन के पास पहुंचे, फरमा अल्लाह के रसूल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जब कारगुजारी, इसको कहते हैं कारगुजारी, हम कहते हैं तबलीगी जबान में, लेकिन तसव्वुफ की जबान में इत्तला कहते हैं कि अपने हाल की इत्तला दो। तो उन्होंने इत्तला दी कि अल्लाह के रसूल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि अमीर साहब ने लकड़ियां जमा कराई, आग जलाई। फरमाया कूद जाओ। तो हम तो नहीं कूदे, हमने कहा कैसा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा हुआ तुम नहीं कूदे, अगर कूद जाते तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाते। और फिर आपने फरमाया कि देखो किसी भी अमीर की, बड़ों की इताअत उस वक्त है कि जब तक वो शरीयत के दायरे के अंदर हुक्म दे, और शरीयत के दायरे के खिलाफ हुक्म दे तो उसकी इताअत नहीं की जाएगी। अभी शेख आपको कह दे कि भाई तुम्हारे लिए नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तो क्या कहोगे? भाई शेख ने कहा है चलो हमारे लिए नमाज माफ हो गई। नहीं, फिर ऐसे शेख की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि शरीयत के खिलाफ हुक्म दे रहा है। शरीयत ने तो कहा नमाज 5 वक्त की पढ़ो, तो शेख उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। जो फराइज है वो फराइज है। बोले रोजे तुम्हारे माफ हो गए, नहीं, वो दूसरे हदूद के अंदर है। तो इसलिए वहां पर आपने इस किस्से पर फिर हिदायत फरमाई थी कि अमीर अगर ऐसी बातों का हुक्म दे तो कभी ना माना जाए। और चलते रहो, लेकिन इख्तलाफ नहीं करना है, इख्तलाफ नहीं करना। कभी कभी इंसान किसी वक्त में कुछ बातें कह देते हैं, कभी हाल की वजह से होता है, कभी कोई गलबा हो गया, कभी किसी बीमारी की वजह से ऐसी बातें कह दे तो उसकी इत्तिबा नहीं की जाएगी और उनसे इख्तिलाफ भी नहीं किया जाएगा। तो फरमाया शेख को अपने हालात की इत्तिला दे, इससे हिदायत लेता रहे और फिर उन बातों पर अमल भी करता रहे। तो इत्तिला और इत्तिबा दो चीजें जरूरी है। बस सारी जिंदगी यही काम करता रहे, शेख की तरफ रुजू करने का असल मकसद यही होता है। तो याद रहे जितने हमारा दर्स सुन रहे हैं, अगर वो हमसे अपनी इसलाह कराना चाहते हैं तो जरूर अपने हालात को बताए और उसके हिसाब से उनको जो वजीफे दिए जाए उसके मुताबिक अमल करेंगे, बहुत ही नफा होगा। बस शर्त यह है कि जो बताएगा उस पर अमल करे, जो नहीं बताया गया उस पर भी अमल करते हैं हम तो फिर वो मिक्स हो जाता है। जितना कहा गया उतना अमल करना है, तो इंशाल्लाह हमारी इसलाह होती जाएगी और हमें बहुत नफा होता जाएगा। तो इस किताब अनफास ईसा में हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रजाइल और फजाइल से मुताल्लिक, यानी अच्छे सिफात और बुरे सिफात, अच्छी बातें और बुरी बातों से मुताल्लिक जो मलफूजात हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह से जमा फरमाए हैं उनको पढ़ लेते हैं और साथ साथ उनकी थोड़ी सी तशरीह कर देता हूं। तो हजरत जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसी अनफास ईसा में से इन बातों को पढ़ते हैं और उसकी थोड़ी सी तफसीर करते हैं, तशरीह करते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से इनको समझने की भी तौफीक अता फरमाए और उनके जरिए अपनी इसलाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। ये जो उन्वान था तसव्वुफ की हकीकत, समझे, ये बात समझ में आ गई। अभी दूसरा जो है वही मजमून चल रहा है जिसे रजाइल आए थे। रजाइल कहते हैं वो बुरी सिफात को, बुरी आदत को, बुरे अखलाक को। तो अभी दूसरी मजलिस में रजाइल की इसलाह, इंसान के बातिन में, ये छोटी छोटी मजलिसें होती थी, इंसान के बातिन में जो खराब और फासिद किस्म की सिफतें हैं उनको रजाइल कहा जाता है। इंसान के बातिन में जो खराब किस्म की सिफतें हैं उनको रजाइल कहा जाता है। इस उन्वान के तहत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब हजरत थानवी की जो मलफूज है वो सुनिए, सालिक को चाहिए कि रजाइल की इसलाह शेख से एक एक की कराए। हजरत थानवी की जो बातें लिखी हुई है ना अनफासे ईसा जो किताब है उसके अंदर, ये उसकी फिर उसकी तशरीह हो जाएगी। सालिक को चाहिए कि रजाइल की इसलाह शेख से एक एक की कराए। जब एक रजीले की मुकावमत पर पूरी कुदरत हो जाए, यानी एक रजीला एक बुराई की जब पूरे तौर पर निकल जाए और मादे का इज्महलाल हो जाए तो दूसरे रजीले का इलाज शुरू करे। यानी पहले, क्योंकि बीमारी हमारे अंदर तो बहुत सारी है, लेकिन कोई एक बीमारी जो बड़ी होती है पहले उसका इलाज शेख भी करना शुरू करता। समझने के बाद जब उसका इलाज हो जाता है और वो बीमारी जब हमारी दब जाती है तो उसके बाद फिर दूसरी बीमारियां का इलाज शुरू करे, वो दूसरी बीमारियां खुद ब खुद फिर कमजोर हो जाती है क्योंकि इसी के अंदर से सारे निकली हुई। तो दूसरे रजीले का इलाज शुरू करे और उस रजीले के इजालाए कुल्ली का भी इंतजार न करे क्योंकि नामुमकिन है, बल्कि इस मादे के वजूद में हजार हा हिकमतें हैं। ये तो असल इबारत थी, अब उसकी तशरी सुनिए। सालिक के माना होते हैं चलने वाला, सालिक के माना होते हैं चलने वाला। तो हम सब कौन है भाई? सालिक है जी, और दाई भी है, याद रखना, क्योंकि हर दाई सालिक होता है। दाई कहते हैं एक दूसरे को समझाना। तो हमें दावत देते देते भी सुलूक तय करना है और सुलूक तय करते करते भी दावत देना है, याद रखना। तो सालिक, हर सालिक दाई होता है, हर दाई सालिक होता है। आज तफरीक कहाँ होगी कि हम तो दाई, हम सालिक नहीं है, बस वहीं से वो गिरना शुरू हो गया। तो सालिक के माना होते हैं चलने वाला, कहां चलेगा? अल्लाह की तरफ चलने वाला। तसव्वुफ की इस्तेलाह में एक तो ऐसे सालिक का माना लोगत में डिक्शनरी में ये है, लेकिन तसव्वुफ की इस्तेलाह, इस्तेलाह कहते हैं टर्मिनेटर, क्या बोलते हैं इस्तेलाह को, कुछ लफ्ज बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो समझ जाओ। तसव्वुफ की इस्तेलाह में सालिक उसको कहते हैं जो किसी शेख के पास, जो किसी शेख के पास अपनी इसलाह कराने के लिए जाता है, उसको सालिक कहते हैं। हाँ, टर्मिनोलॉजी जी, वही वही उसको कहते हैं इस्तेलाह, तसव्वुफ की इस्तेलाह। तसव्वुफ के अंदर ये टर्मिनोलॉजी है, उसको इस्तेलाह कहते हैं, इसलिए आइंदा समझते जाना। तो सालिक उसको कहते हैं जो किसी शेख के पास अपनी इसलाह कराने के लिए जाता है, तो वो सालिक है। इसलिए कहा ना, हर दाई को सालिक होना चाहिए, यानी खुद तबलीग भी एक तसव्वुफ है, उसके अंदर भी उसके जो बड़े हैं उनसे मुंसलिक होकर, उनसे अपने आप को प्राइवेट अपनी बातों को सुनाकर उनसे अपनी इसलाह कराता जाए, या उनके अलावा किसी और को भी अपना शेख बनाकर अपनी इसलाह कराता जाए, इसलाह कराने के लिए जाना, गोया के वो रास्ते पर चल रहा है। तसव्वुफ को कहते हैं तरीक। तसव्वुफ को क्या कहते हैं? तरीक। रास्ते को भी तरीक कहते हैं, अरब में जाओ तो कहते हैं तरीक तरीक तरीक, यानी भाई रास्ता दो, रास्ता रास्ता रास्ता। तो तरीक तरीका माना रास्ता, और इसीलिए वहां से किताब को किताबों के अंदर तरीकत का लफ्ज बहुत आता है, तो तरीक से तरीकत निकला है। तो तसव्वुफ को कहते हैं तरीक यानी रास्ता। तो सालिक, और सालिक कहाँ चलता है, इस तरीक पर, सालिक माना चलने वाला, तो चलने वाले के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो उसको कहते हैं तसव्वुफ, या उसको कहो तरीक, और सालिक इस तरीक पर चलने वाला है। और शेख की मिसाल रहबर की है, रहनुमा की है, यानी रहबर की, यानी हम अगर कहो तो दलील, कहते हैं ना भाई कहीं गश के लिए जाते हैं, मुलाकात के लिए, भाई कौन दलील बनेगा, तो वो ऐसे ही, तो शेख की मिसाल रहनुमा की है जो उसको रास्ता बताता है कि इस तरह चलो और इस तरह काम करो। तो हजरत ने फरमाया कि सालिक को चाहिए कि रजाइल की इसलाह शेख से एक एक की कराए। मसलन उसके अंदर गुस्सा है, और गुस्सा एक रजीला है, गुस्सा एक रजीला, रजीला यानी एक बुरी चीज है, बुरी आदत है, उसकी इसलाह करानी है। गुस्से के नतीजे में वो क्या करता है, मारता है, पीटता है, या डांट डपट करता रहता है, और गुस्से के अंदर आपे से बाहर हो जाता है। तो उस शेख को बताए कि हजरत मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता है, और गुस्से में मैंने पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, तो ये बतावे। आज क्या है, हम बताते हैं कुछ भी नहीं है, क्यों, क्या नफ्स कहता है, बताने से शेख क्या समझेगा, और इसको क्या बताने की जरूरत, इसका क्या इलाज करेंगे जी, तो बताने की जरूरत होती है। तो खैर गुस्से के नतीजे मारता पीटता है, डांट टप्पड़ करता है, गुस्से के अंदर आपे से बाहर हो जाता है। तो उस शेख को बताएं कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, और गुस्से के नतीजे में बहुत सी गलत बातें भी मुझसे हो जाती। अब शेख उसका इलाज करेगा, कैसा इलाज करेगा, वो ऐसा इलाज नहीं करेगा कि उसके नतीजे में गुस्सा आना बंद हो जाएगा, नहीं, बल्कि इलाज के बाद भी गुस्सा तो आएगा, इलाज के बाद भी गुस्सा तो आएगा, क्योंकि गुस्सा एक फितरी सिफत है, ये तो नेचुरल है, इंसान के अंदर अल्लाह ने उसको बनाया ही है, फितरी चीज है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इलाज के नतीजे में वो गुस्सा शरीयत के ताबे हो जाएगा। गुस्सा क्या होगा, गुस्सा शरीयत के ताबे हो जाए, जैसे हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु को गुस्सा तो था, लेकिन पहले इस्लाम पर गुस्सा करते थे, फिर इस्लाम के खिलाफ कुफ्र पर गुस्सा करने लगे, तो गुस्सा तो रहा लेकिन इस्लाह हुई तो गुस्सा बदल गया। ऐसे ही हम आज गुस्सा दूसरों पर करते हैं, जब हमारे अंदर की इस्लाह होगी तो गुस्सा अपने आप पर करेंगे, या कोई दीन पर न चलने वाले पर हमें आएगा, अभी तक तो वैसे ही आ रहा था। तो यह है कि गुस्से की सिफत बदल जाए, उसको कहते हैं इमाला, कि इस जगह से हटाकर दूसरी जगह डाल। इसी तरह नफ्स के अंदर जितने भी रजाइल है, चाहे वो गुस्सा हो या शहवत हो या बुख्ल हो जी, ये सब फितरी है, फितरतन ये है, रखी हुई चीजें, और ये सिफात अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर इसलिए रखी है ताकि इंसान उसको सही जगह पर इस्तेमाल करे, सही महल पर इस्तेमाल करे। अगर इंसान के अंदर गुस्सा ना हो तो अपनी जान का दिफा कैसे करेगा, माल का दिफा कैसे करेगा, अपने बीवी बच्चों का दिफा कैसे करेगा। गुस्सा न होने का नतीजा यह होगा कि खा को इस पर हमला आवर हो, उसके बीवी बच्चों पर हमला आवर हो, मगर उसको गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ, और दूसरे के इस गलत इकदाम को रोकने के लिए तबीयत में कोई मुहर्रिक ही ना होगा, तो न अपने नुकसान से बचने का कोई तकाजा पैदा होगा अगर गुस्सा नहीं होगा। तो गुस्सा अपने हकीकत के एतबार से तो अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत होता है तो शेख की सोहबत में बैठकर जो इलाज होगा तो उस गुस्से का सही जगह इस्तेमाल हो जाएगा। कि क्या होगा कि अपनी दिफा के लिए गुस्सा करना है तो वो तो करना चाहिए, कोई हमारा माल ले रहा है तो उस पर हमें गुस्सा करना है। पहले अपने भाइयों पर गुस्सा होते थे, छोटी छोटी बातों पर अपने तबीयत के खिलाफ काम हुआ तो गुस्से हो जाते थे, अब शरीयत के खिलाफ कोई काम हुआ है तो गुस्सा आएगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म टूट रहा है। तो वो सब अब कंट्रोल आ जाएगा, अब वो गुस्सा बेजगह नहीं निकालेगा, कंट्रोल करेगा, कहां कितना आंखें दिखाना है, कितना डांटना है, कितना करना है। अब वो सारा का सारा सोहबत में बैठकर जब अंदर का ईमान बनता है तो फिर ये करना आसान होता है। एक नवाब का वाकया है, जैसे मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक नवाब साहब हर काम जाब्ते में किया करते, यानी उसूल के साथ, जाब्ता कहते हैं उसूल। उनका तुर्र इम्तियाज ये था कि उन्होंने अपना एक जाब्ता बना रखा था, एक अपनी सेटिंग बना रखी थी कि इतने बजे से इतने बजे तक फुला काम करूंगा और इतने बजे तक फुला काम करूंगा, टाइम सब सेट किया होता। फुला वक्त खाना खाऊंगा, फुला वक्त सोऊंगा, फुला वक्त उठूंगा, और जिस काम के लिए जो वक्त मुकर्रर कर रखा था उसके बारे में उनका कहना यह था कि मैं उस वक्त जाबते में यह काम कर रहा हूं, चाहे वो काम न कर रहे हो। उन्होंने सब लिख दिया था। अब वो काम न भी कर रहे तो फरमाया मेरा काम था इतने वक्त सोना, बस मैं उसके अलावा और कुछ काम नहीं करूंगा, चाहे मैं सोऊं चाहे न सोऊं, लेकिन मेरा वक्त सोने का बस। तो ऐसा था, तो उनके यहां एक जाब्ता था। तो मसलन सोने का वक्त 6 घंटे मुकर्रर किया है और ये तय किया हुआ है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। अब अगर 5 बजे आंख भी खुल जाएगी तब भी वो 6 बजे तक लेटे रहेंगे। तो ये था उनका जाब्ता था, अगरचे उस वक्त वो हकीकत में तो नहीं सो रहे लेकिन जाब्ते में सो रहे हैं। तो एक दिन नवाब साहब के उठने का वक्त 6 बजे था, हाँ उठने का वक्त 6 बजे था, मगर 5 बजे आंख खुल गई। अब जाबते में वो सो रहे थे, उस वक्त घर में एक बंदर घुस आया, घर में एक बंदर घुस आया। वो बंदा नवाब साहब के कपड़े लेकर भाग गया, नवाब साहब के कपड़े लेकर भाग गया। फिर वो दोबारा आकर रोटी लेकर भाग गया, फिर कुछ और सामान लेकर भाग गया, मगर नवाब साहब लेटे लेटे बंदर को देख रहे हैं। जूं ही 6 बजे तो फौरन हड़बड़ाकर उठे और कहने लगे अरे भाई कोई देखने वाला नहीं है, ये बंदर सब चीजें उठाकर ले जा रहा है, क्या सब लोग मर गए हैं? अरे कुछ समझे भी, वो खुद जाग रहे हैं, खुद सब देख रहे हैं, लेकिन उठने के बाद क्या कर रहे हैं, अरे क्या सब सो रहे हैं, ये बंदर सारी चीजें लेके जा रहा है, कोई उसको हटाने वाला नहीं। कहने लगे अरे भाई कोई देखने वाला नहीं, ये बंदर सब चीजें उठाकर ले जा रहा है, क्या सब लोग मर गए? लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब आपने बंदर को ले जाते हुए खुद देखा था? कहने लगे हाँ हमने खुद ले जाते हुए देखा था। तो फिर जनाब आप ही बंदर को रोक देते, आप ही बंदर को रोक देते? तो नवाब साहब ने कहा अरे भाई हम उस वक्त जाबते में सो रहे थे, अब उस वक्त बंदर आवे के कुछ भी आवे हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए कि जाबते को इस दर्जा अपने ऊपर लागू कर लिया कि इंसान के जो फितरी जज्बात होते हैं कि इंसान अपने जान और माल का दिफा करे, वो भी जाबते के आगे कुर्बान है। तो ये इसको कहते हैं, गुस्सा ही नहीं आ रहा है भाई, एक बंदर लेके जा रहा है और फिर ऊपर से गुस्से हो रहे हैं, अरे तुम लोग सो रहे हो? तो ऐसे ऐसे होते हैं जोक्स है। बस यहां तक रखे इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह यहां से बात शुरू करेंगे, थोड़ी देर मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह।